Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Chautha Adhyay, Chhatva Mantra Chalega. Hum log parso पांचवा मंत्र देखे थे, कुछ माताओं ने कहा कि थोड़ा सा और भी समझाइए इसको। पांचवा मंत्र है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम सरूपाः अजो ही एको जुषमाणो अनुशेते जहात्तेनाम भुक्त भोगाम अजो अन्यः। इस मंत्र में प्रकृति और जीव का और परम मुक्त पुरुष का तीन का विचार है। हेडिंग में तो दिया है प्रकृति और जीव के संबंध का विचार। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी और दूसरे अज्ञानी। इसलिए हेडिंग में तो प्रकृति और जीव के संबंध, तो जीव के तो जीव अनेक हो गए, तो यहां पर प्रकृति अजा को बोल दिया। और प्रकृति या अजा कैसी है, कितनी रूप वाली है, कितनी रंग वाली है, कितनी गुण वाली है, तो तीन गुण वाली प्रकृति है। हमेशा हम लोग श्रवण करते ही हैं, त्रिगुणात्मिका है। और ये प्रकृति मन ये सृष्टि है, कोई प्रकृति दूसरी तो है ही नहीं। यह है जो पूरी की पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि को ही प्रकृति बोलते हैं। और इस सृष्टि का जो वर्णन है, निर्मिति है, दो प्रकार से सृष्टि होती है ऐसा है। इस सृष्टि पंचभूतों से होती है ऐसे भी कहते हैं, और कुछ उपनिषदों में ये तीन भूतों से होती है ऐसे भी कहते हैं। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए तीन भूतों से उत्पन्न हो गई है ऐसा यहां आ जाता है। शुक्ल लोहित कृष्ण, यहां लोहित शुक्ल कृष्ण है। तो लोहित, लोहित माने लाल, तेज, तेज का जो प्रकाश अपना अग्नि है, अग्नि की ज्वाला आदि लाल होती है, इसलिए इस सृष्टि में, इस प्रकृति में गुण है, लोहित है। जल शुक्ल है मानी शुद्ध जल है, इसलिए इस प्रकृति को विशेषण दिया ये शुक्ल रंग वाली है। ऐसे शुक्ल का अर्थ सफेद शुभ्र होता है, जो रंग होता है सफेद रंग दो प्रकार का होता है। न्याय शास्त्र में आया शुक्लम द्विविधम भास्वरम अभास्वरम, शुक्ल रूप मानी सफेद रूप दो प्रकार का है, एक भास्वर और दूसरा अभास्वर। जल में अभास्वर शुक्ल रूप है, भास्वर का अर्थ है कि दूसरों को प्रकाशित करने वाला, और अभास्वर का अर्थ है कि दूसरों को प्रकाशित कर नहीं सकता है। तो जल में सफेद रूप है, भास्वर रूप है, शुक्ल रूप है, वह पर प्रकाश नहीं है, दूसरों को दिखा नहीं सकता है। फिर वो भास्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? वह शुक्ल है, सफेद है, इसमें क्या प्रमाण है? तो बोलते हैं जल लीजिएगा, आकाश में उड़ा दीजिएगा, तो एक एक बूंद मोती की तरह अलग चमकते हैं। तो इसका मतलब उसमें कौन सा रूप है? भास्वर रूप है, भास्वर है, लेकिन वो दूसरों को भासित करती नहीं, करता नहीं है, इसलिए अभास्वर शुक्ल रूप है। तेज में भास्वर शुक्ल है, लेकिन उसका अलग जो अग्नि है उसमें भास्वर, अग्नि के कारण ये प्रकाशित हो रहा है हम लोग। यहां अग्नि को लोहित बोल दिया लाल रंग वाली, और जल का रूप जो है शुक्ल है, तो शुक्ल रूप वाली ये प्रकृति है, ये प्रकृति मन सृष्टि है। दूसरा कृष्ण रूप बोल दिया, कृष्ण मने काला, और कृष्ण का अर्थ है गहन, ये पृथ्वी का रंग है। जितना पानी गहरा होगा उस पानी में ज्यादा श्यामलता आएगी, एकदम गहरा जल होता है तो कैसा दिखाई देता है, काला सा मेघ सा दिखाई देता है। ये प्रकृति, ये पृथ्वी का रंग है। तो प्रकृति, जल, तेज, ये तीनों के द्वारा बनी हुई जो सृष्टि है इसी को प्रकृति बोलते हैं। इसको त्रिवृत प्रकृति बोलते हैं, तो उसका यहां त्रिवृत का वर्णन कर रहे हैं। और ये प्रकृति, ये अजा क्यों कहा, न जायते इति अज, और ये स्त्रीलिंग है इसलिए कभी ये उत्पन्न होने वाली नहीं है। प्रकृति, प्रकृति और अजा का दो, एक तो उत्पन्न होने वाली नहीं है और दूसरा अर्थ अजामनी बकरी, दोनों का अर्थ है। अजा का अर्थ पता ही है कि कभी उत्पन्न नहीं होती है तभी भी दिखाई देती है। संत एकनाथ महाराज जी इस सृष्टि का वर्णन करते हुए सुंदर रूपक देते, वो भी बोलते हैं भीष्म पिता मां की कन्या के साथ, वंद्या का पुत्र उसके साथ धूमधाम से शादी हो गई। वंद्या का पुत्र और भीष्म पिता मां की लड़की कन्या, दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के लिए मंडप दिया गया था, फूल मंगाए गए थे, खंभे बल्लियां लगाई गई थी बढ़िया, तो खरगोश की सिंह की बल्लियां थी, खरगोश की सिंह की मंडप के लिए बल्लियां लगाई है, और फूल आदि आकाश के फूल से झालरी से सजाया गया है। और लोग वरा बराती कहां से आ गए कि गंधर्व नगर से आ गए हैं, बराती सब के सब गंधर्व नगर से आए हुए हैं। और उसमें खीर बनाई गई थी, बोलते हैं कि एक 50 ग्राम सी मिश्री लाई और है ढेर पानी में, कुएं भर पानी में डाल दिया और उसकी खीर बन गई, और खीर परोस गई। खाने के लिए लोग कैसे बैठे थे, बिना मुंडे के, मैंने बिना सर के लोग बैठे थे और खा के बड़े प्रसन्न हो गए। तो इसमें कुछ निकला, इसी प्रकार ये अजा, मैंने न जाए थे थी अजा, इस प्रकार की ये प्रकृति है, ये प्रकृति का वर्णन आ गए। और फिर दूसरा बकरी का रूपक दे दिया, ये हम लोगों को समझने के लिए ही ये रूपक दिया अजा बकरी। तो इस बकरी के दो बच्चे हैं, अजा अजा मनी बकरे, बकरी के दो बकरे हैं, एक अज्ञानी जीवात्मा और एक ज्ञानी जीवात्मा। दोनों बकरों का स्वरूप बताया, जो अज्ञानी हैं उस महा अपना श्रीमद् भागवत आप लोग हमेशा श्रवण करते हैं, उसमें आया पुरंजनी उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यानी, पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन और पुरंजनी दोनों का कितना घनिष्ठ संबंध है, प्रेम है। पुरंजनी जो भी क्रिया करती है उस क्रिया का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, मैंने उस पुरंजनी का प्रत्येक स्वभाव अपने पर वो ओढ़ के लेता है, इसलिए उसमें हां में हां मिलाते रहता है। तो ये जीवात्मा ही कौन है, पुरंजन है, और प्रकृति क्या है, पुरंजनी है। मतलब बोले ना यह बकरा का रूप का भी क्यों दे दिया, तो वहां भी पुरंजन और पुरंजन कोई दूसरे नहीं है, वो इसी का रूपक थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए अलग अलग दिया गया। और ये बकरा पुरंजन के विषय में यहां बोल दिया वो कैसा है, तो विज्ञान आत्मा है, विज्ञान आत्मा को जीवात्मा बोल दिया। और वह जीवात्मा अनादि काम कर्म अविद्या आदि के द्वारा अपने स्वरूप को भूल जाता है, क्योंकि प्रकृति को ही अपना मानते रहता है और मानते हुए जुष्मान सेवमान अनुसेते रात दिन भर इस प्रकृति के साथ ही अपना संबंध तादात्म्य करता है। और तादात्म्य का संबंध मैंने वो आप लोगों को उदाहरण दिया था तोते का और भोरे का। जो जामन का पेड़ है, जामन के पेड़ के ऊपर एक तरफ तोता आ रहा था और एक तरफ काला भोरा बैठा हुआ है। तोते को लगता है कि ये जामन का पेड़ है तो ये जामन लगा हो है, और उस भोरे को लगता है कि ये जामन अपना इसका जामन का पेड़ हरा भरा है, इसमें बैठना चाहिए, फूल खिला होगा और उसका मकरंद लिया जाए। तो एक दूसरों को अलग अलग अपना विषय समझकर उसके साथ संबंध होते हैं और मर जाते हैं। तो इसी प्रकार ये जीवात्मा अपने अज्ञान के कारण इस प्रकृति के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करता है और अपना जो वास्तविक सच्चिदानंद रूप था उसको वह भूल जाता है। ये हो गया एक अज्ञानी पुरुष, इसको यहां बोल दिया अजय ही एको जुष्माना अनुसेति। मैंने पांचवे में एक अजय मैंने अविवेकी, जुष्माना आसक्त होता हुआ, अनुसेते मैंने खाते पीते रहता है, प्रकृति का आनंद लेते रहता है। दूसरा जो मुक्त पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, उसके लिए आया अन्य मैंने दूसरा अज है, वो भी कभी उत्पन्न होता नहीं है, दोनों भी अज ही है लेकिन अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं। और अविद्या के कारण उत्पन्न होने पर एक अपना सुंदर प्रकृति के साथ तादात्म्य करते रहता है, और दूसरा जो ज्ञानी महापुरुष है उसके लिए आया ये नाम भुक्त भोगाम जहाति, इस प्रकृति को उपभोग करके त्याग देता है। उपभोग करके त्याग देता है इसका अर्थ है कि हम लोग कितने न जाने अनंत जन्म हो गए, आज तक इसको हम त्यागने की इच्छा करते नहीं है। और जो साधक हो जाता है उसके लिए आचार्य उपदेश प्रकाश अवसादित, भाष्यकार ने उसके लिए बोल दिया, आचार्य के पास जाता है, गुरुदेव के पास जाता है। कौन जाएगा? जब साधक होगा तभी जाएगा। गुरुजी के पास, आचार्य के पास जाने पर शास्त्र के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से उसको समझाते हैं, और समझाने पर ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान हो जाने के बाद में इस प्रकृति को त्याग देता है। प्रकृति को त्याग देता है, स्वरूप से नहीं त्यागता है, अपने मन से। प्रकृति को स्वरूप से कोई त्याग नहीं सकता है। स्वरूप से मने चला चलो सन्यासी होकर चले तो कहां जाए, प्रकृति को छोड़कर जाएगा? संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं संसार को त्यागने की इच्छा कर बोलते हो तो ये शरीर तो सबसे बड़ा संसार है, इसको त्याग कर कहां जाओगे सन्यास लेकर? और जब सन्यासी भी ले लोगे तो तुकाराम महाराज जी बोलते हैं जरी झाला सन्यासी माध्यान्य तोंडवासी, जरी झाला सन्यासी माध्यान्य तोंडवासी, खाने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा, मैं संसार कहां छोड़ा? तो इसका मतलब बाहर से संसार कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने संसार को स्वरूप से ज्ञानी नहीं छोड़ता है, मन से छोड़ता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ज्ञानी महापुरुष इस प्रकृति को त्याग देता है तो मन से त्यागता है, शरीर से नहीं। वो तो खाएगा पिएगा, ऊपर से कोई दोनों एक सर के दिखाई देते, दोनों एक सर के। व्यक्ति दो बैठे हुए हैं और रत्न लेके गए तो दोनों दृष्टि सार के रत्न जाने जो पार के, तो रत्न को जानने वाला वो पार की वो अलग रहता है। दोनों व्यक्ति बैठे हुए और उसके पास रत्न लेके गया, दोनों आदमी समान दिखाई दे रहे हैं लेकिन रत्न को कौन जानेगा? पार के। दूसरा भी वैसा ही मनुष्य ही है लेकिन मनुष्य होने पर भी उसको जानेगा नहीं, तो जानने की बुद्धि अंदर बैठी हुई है। इसी प्रकार संसार को त्यागने की बुद्धि, प्रकृति को त्यागने की बुद्धि अंदर है, बाहर नहीं। बाहर से तो कोई भी क्रिया में अंतर नहीं, माने बाहर से दोनों दृष्टि सार की, तो कारण दोनों व्यक्ति बैठे हुए समान ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के भीतर जो ज्ञान है वो दोनों का अलग अलग है। इसी प्रकार जीवात्मा जो दो है, एक बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बकरा है, और दूसरा जो ज्ञानी पुरुष मुक्त पुरुष है वो बकरा दूसरा है, रहते संसार में रहते हैं, लेकिन दोनों की भीतर की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का अंत है। एक के लिए वृत्ति कैसी है, अतिथिशाला के रूप में आप लोग हमेशा श्रवण करते हैं, ये संसार को क्या समझना है, धर्मशाला, अतिथि ग्रह धर्मशाला समझना है। तो धर्मशाला में रहने पर कभी आसक्ति होती नहीं है, तो इसी प्रकार अपना घर अपना शरीर ये सब के सब कैसा है, धर्मशाला। और दूसरे बोलते हैं ये चमन ऐसा ही रहेगा, ये बगीचा ऐसे ही रहेगा, और इसमें चिड़िया आकर अपना अपना दाना खाके चली जाएगी, इस बगीचे में कोई फर्क होने वाला नहीं है, ऐसा समझने वाला ही ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष के लिए कैसा रहना चाहिए, उसको तुकाराम महाराज जी बोलते हैं, वसती कर वसती आला, वसती कर वसती आला, प्रात काली निगुनी गेला, वसती कर वसती आला, प्रात काली निगुनी गेला, तैसे आसावे संसारी, जोवरी प्राचीनाची दोरी, तैसे आसावे संसारी, कैसे वस्ती कर, माने धर्मशाला में रात को आया, इसको बोलते हैं वस्ती कर वस्ती आला, माने निवास करने के लिए आया, प्रात काली निगोनी गेला, जैसा ही सुबह सुबेरा हो गया वो निकल गया, तैसे आसावे संसारी, इसी प्रकार हम लोगों को इस प्रकृति के साथ इस संसार में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। कब तक रहना चाहिए, जो वरी प्राचीनाची दोरी, प्राचीनाची, प्राचीन का अर्थ या प्राचीन नहीं है, पूर्व प्रारब्ध की दोरी, मैं पूर्व कर्म से जो प्रारब्ध है वो जब तक प्रारब्ध है तब तक आप संसार छोड़ के जा नहीं सकते, तो संसार में रहना ही है, तो रहना है तो कैसा रहना है, उस अतिथि की तरह रहना है, तुकाराम जी बोलते हैं। तो इसी को यहां पर ज्ञानी अन्य आज बोल दिया, तो इस मंत्र का अर्थ आप लोगों को पता चला, ये बकरी जो प्रकृति है, एक अज्ञानी जो बकरा इसके साथ हमेशा आनंद लेता रहता है, और वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम करते रहते हैं, और दूसरा जो बकरा है ज्ञानी है, वह एक बार ज्ञान हो जाने के बाद में अब उसको उतनी देरी है, प्रारब्ध जिस दिन समाप्त हो गया उसी दिन ये अपने स्वरूप को नहीं मिल गया, ये शरीर को त्याग देगा लेकिन अपने स्वरूप को मिल गया, इस प्रकार यहां वर्णन किया है पांचवे का। अब छठवे का देख लीजिएगा, ये प्रसिद्ध मंत्र है, जीव और ईश्वर की विलक्षणता। इदानीं सूत्रभूतो परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते, अब परमार्थ तत्व का निश्चय करने के लिए दो सूत्रभूत मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। सूत्रभूतो मानि दो सूत्र, दो वचन है ना, इदानी मनी इस समय, सूत्रभूतो मानी सूत्र स्वरूप होने वाले, ये क्या करने वाले, परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम, परमार्थ ही एक वस्तु है और संसार अवस्तु है, परमार्थ वस्तु का अवधारण मने निश्चय, दृढ़ निश्चय करने के लिए, उपन्यसते दो वचन क्रिया भी, इसका दो मंत्रों का उच्चारण, दो मंत्रों का यहां उल्लेख किया जाता है, हम लोग तो एक ही पढ़ेंगे, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं साद्वत्ति अनस्नन्नन्या अभिचकाशिति द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन्यो अभिचकासिति द्वा सुपर्णास् सयुजा सकाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोः अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनस्नन् अन्यः अभिचकासिति द्वा सुपर्ण द्वा ये छंदस प्रयोग है सुपर्ण सयुजा सकाया ये चारों के चारों पद छंदस है दो वचन होने पर दौ सुपर्णो सयुजो सकायो ऐसा होना चाहिए जैसा रामो रामो हो जाता है लेकिन यहां छंदस प्रयोग है और छंदस प्रयोग में ऋषि परिणित होता है वेदों में जो मूल में आए हुए हैं उनको व्यवहारिक व्याकरण का नियम लगता नहीं है मैंने उनको लगाने की कोई बाध्यता नहीं है व्यवहार में संस्कृत लिखते हैं तब संस्कृत के व्याकरण का नियम लागू होता है वहां नियम के इधर उधर नहीं जा सकते हैं और वेदों में जो मंत्र आते हैं उनको व्याकरण का नियम से विरुद्ध दिखाई देने पर कहा जाता है ये छांदस प्रयोग है अर्थात ये वैदिक प्रयोग है वैदिक प्रयोग के लिए कहीं नियम होता नहीं है क्योंकि व्याकरण उसको देखकर ही बनाया जाता है व्याकरण बाद में बनाया जहां जहां सब मंत्र दिखाई दिए अक्षर बनाए दिए और जितना हो सके उतना नियमबद्ध किया गया पाणिनि जी महाराज के द्वारा कात्यायनी अनेक ऋषियों के द्वारा लेकिन कहीं कहीं नियम में बंधते नहीं है ये वेदों के मंत्रों में जो शब्द तब उनको क्या कहा छांदस प्रयोग क्योंकि ये छांदस होने के कारण उनको छूट दी जाती है जैसे ऋषि लोग कभी कभी अपनी स्वतंत्रता को लेकर अपने शब्दों को आगे पीछे करते हैं अलग अलग नाम रखते हैं मुनि स्वातंत्र मापन्यम यदि इच्छति करोति तद मुनि लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करके जो चाहे वो करना चाहते कैसे बोले वास्तविक नदी नहीं है उसको नदी संज्ञा दी जो गौरी आदि शब्द दीर्घ कारांत को क्या बोल दिए नदी संज्ञा बोल दी और वास्तविक गंगा अकारण शब्द है उसको नदी संज्ञा नहीं है जो इकारांत शब्द है हरि आदि कवि आदि उसकी घी संज्ञा कर दी मानी जहां स्थल है वहां नदी कर देते हैं नदी है स्थल कर देते हैं ये शब्दों की संज्ञा कर देते हैं तो ये मुनि लोगों को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं लेकिन यहां पर आने पर कहीं कहीं बोलते हैं कि व्याकरण का नियम लगता नहीं है तो छांदस प्रयोग तो दौ सुपर्णो व्याकरण के अनुसार सयुजो सकायो दो दो प्रयोग होता है ना दो दो वचन का तो यहां छांदस प्रयोग है